पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा खानदान जयपुर पहुंच गया है और वेद बच्ची की मुस्कान में खोया हुआ है। अब मेहरा फैमिली लॉन में सजी महफिल में मौजूद है, जहां शेखावत फैमिली भी है। वेद उस बच्ची और मानवी को तलाश रहा है। गेस्ट मेहरा फैमिली से मिलते हैं। हॉल में मौजूद लड़कियों की निगाहें वेद पर हैं, लेकिन उसकी निगाहें उस बच्ची पर हैं। वेद के पास एक लड़की आती है। वेद की नज़र बच्ची पर पड़ती है और वो तेज़ी से उस दिशा में बढ़ता है। माया निराश हो जाती है। सुधांशु और दीपक वेद से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। माया वेद को ड्रिंक के लिए राज़ी करने की सोचती है। वेद की आंखें लॉबी की तरफ उठ जाती हैं। रमेश और वेदांत वेद और माया को देख रहे हैं। वेदांत को विश्वास है कि माया अपना काम कर देगी। बलवंत मेहरा अपने बेटे वेद को लेकर परेशान है। रमेश और वेदांत बलवंत मेहरा के टेबल पर ध्यान दे रहे हैं। रूपा पूछती है कि रुचिका उनसे मिलने नहीं आई। रानी बताती है कि वो सुबह पहुंचेगी। डिनर खत्म हो चुका है। वेद बेचैन है। माया वेद के पीछे जाने की सोचती है। हम सुधीर के कमरे की तरफ बढ़े। सुधांशु और दीप के साथ वेद भी था। असल में सुधीर नीचे खाना खाने नहीं आया था। उसने कह दिया था कि वो रेस्ट करना चाहता है। उसका सिर दर्द कर रहा था। ब्रजेश मेहरा ने भी उसे आराम करने के लिए कह दिया था, क्योंकि कल उसकी सगाई थी और उसका फ्रेश रहना जरूरी था। ठीक है, चलो, वेद ने कहा और वो लोग उसके कमरे की ओर बढ़ गए। वेद की दीपिका और सुधांशु तीनों से अच्छी जान पहचान बन चुकी थी। वेद को वे दोनों बहुत अच्छे लगे थे। वेदांत से उसकी ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि वेदांत हमेशा अपने आप में बिजी रहता था। ऐसा कह सकते हैं कि वो साजिशों में लगा था। जब वेदांत ने भी उससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वेद ने भी उससे दूरी बनाए रखी। लेकिन ना चाहते हुए भी वेद की सुधांशु के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी और उसे उनकी कंपनी बहुत पसंद आने लगी थी। सुधीर भी स्वभाव में सुधांशु और दीपक जैसा ही था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, सुधीर उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया? किसी गर्लफ्रेंड की उम्मीद कर रहे थे क्या? दीपक ने मजाक किया। नहीं, मैंने खाना मंगवाया था, उसी का इंतजार कर रहा था, सुधीर ने हंसकर जवाब दिया। सच सच बताओ, आज नीचे क्यों नहीं आए? तुम्हें आना चाहिए था, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, दीप ने सवाल किया। बस ऐसे ही, मन नहीं किया, सुधीर सोफे पर बैठते हुए बोला। उसकी आवाज़ में हल्की परेशानी थी। या फिर ये बात है कि तुम्हें रुचिका पसंद नहीं है, तुम्हें कोई और पसंद है? वेद ने हल्के तंज के साथ कहा। मुझे कोई भी पसंद नहीं है, सच पूछूं तो मैं शादी ही नहीं करना चाहता। मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी अभी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, मालूम नहीं डैड को क्या हो गया है। लगता है रमेश चाचा चाहते हैं कि मेरी शादी वहीं हो जाए, इसलिए ये सब हो रहा है, सुधीर ने खाना लगाते हुए कहा। अगर सगाई से पहले तुम मना कर देते तो बात और थी, मगर अब जब सब फाइनल हो रहा है तो ये एटीट्यूड क्यों? मुझे तो लगता है रुचिका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज वो भी नहीं आई। सब तुम्हारे और रुचिका के बारे में पूछ रहे थे, मगर तुम दोनों ही गायब थे, दीपक ने सोचा समझकर कहा। तो अब तो बैठकर सोच लो, शादी के बाद क्या करोगे? तब तो उसी के साथ रहना पड़ेगा, भागने की बजाय सबको फेस करो, वेद ने सलाह दी। ये कहकर वेद अपनी जगह से उठा और सुधीर के कमरे की बालकनी में चला गया। बाहर अंधेरे में लॉन की तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर वापस आकर चुपचाप बैठ गया। माया वेदांत के कमरे के बाहर गुलाबी साड़ी में कॉरिडोर में खड़ी थी। उसे लगा था कि वेदांत अब तक कमरे में पहुंच जाएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया था। ये सोचकर वो थोड़ी परेशान हो गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने सोचा कि अब आगे क्या करना है। उसके प्लान की तरफ से कामयाबी के लिए उसका वेदांत के साथ उसके कमरे में अकेले जाना बहुत जरूरी था। जैसा देखा, एक प्लेबॉय, उसे हिसाब से वेदांत को लगता था कि वो आसानी से माया की पकड़ में आ जाएगा, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। सुधीर और दीपक अपने अपने कमरों में चले गए थे, मगर वेदांत कमरे में जाने की बजाय वापस नीचे की ओर चला गया था। वो छोटी बच्ची बहुत से एक बार मिलना चाहता था। इससे पहले वो सालों में मिली थी, मगर उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो उसे बहुत दिनों से जानता है। शायद पिता का प्यार था बेटी के लिए, जो अनजाने में उसे अपनी तरफ खींच रहा था, और एक छोटी सी बेटी अपने पिता को खतरे से भी बचा रही थी, क्योंकि वो उसे छोटी बच्ची को सिर्फ एक बार देखने के लिए कमरे में जाने की जगह नीचे लॉन में आ गया था, जबकि माया कमरे के बाहर अपनी साजिशों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वेद कॉरिडोर से बाहर निकला, उसकी नज़र सामने पड़ी। रतन सिंह शेखावत, रुचिका के पिता, मिल गए। बेटा, कुछ चाहिए था? उन्होंने पूछा। नहीं, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही जा रहा हूँ, थोड़ी हवा खाने, वेदांत ने सहजता से कहा और बाहर की ओर बढ़ गया। मेहमानों के खाने का काम निपट चुका था, तो खाने खाने वाले होटल का स्टाफ और वेडिंग प्लानर और उसकी टीम बचे थे, जो बाद में खाना खाने वाले थे। इससे पहले उनका ध्यान अरेंजमेंट पर था। लॉबी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र मानवी पर पड़ी, जो रीता के साथ एक टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। ये तो जहाँ है, उसने मन ही मन सोचा। वेद को पता था कि इस टाइम जो खाना खा रहे हैं वो होटल का स्टाफ है, जा और अरेंजमेंट करने वाले लोग।
तो मानवी को खाना खाते देखकर आगे वो होटल स्टाफ का हिस्सा होगी। मैं तुमसे सुबह बात करूंगा, वेदांत ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए मन ही मन कहा और वहीं खड़ा सोचता रह गया। माया कमरे के बाहर कॉरिडोर में चहलकदमी कर रही थी। उसके हाथ में एक नशीला पदार्थ था जिसे वो बहुत चालाकी से वेद को पिलाने वाली थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर एक बार मुझे उसके कमरे में जाने की इजाज़त मिल जाए तो मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। माया के मन में ये भी आया कि अगर और कुछ ना हुआ तो वो वेद के कमरे में रखा पानी ही इस्तेमाल कर लेगी, जिसमें वो रात को पिए जाने वाला नशीला पाउडर मिला सकती है। उधर वेद मानवी पर नजर रख रहा था। वो लॉबी से बाहर आया और साइड से होते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां खाना लगा था। वहां से आगे एक कोना था जो थोड़े अंधेरे में था और जहां रोशनी बहुत कम थी। वो चुपचाप उसी साइड में चला गया, सोचते हुए कि यहां से वो आसानी से नजर रख पाएगा। माया ऊपर उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, मगर वेद ऊपर जाने की बजाय नीचे मानवी को ही देख रहा था। जब वेद ऊपर नहीं पहुंचा तो माया ने उसे फोन लगाया। कितनी देर से मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी हूं और वो आया ही नहीं, माया ने चिढ़कर पूछा। क्या कहा तुमने, वो ऊपर नहीं आया? मुझे लगता है वो सुधांशु और दीपक के साथ था, शायद उनके कमरे में चला गया होगा, वेदांत ने सोचा और जवाब दिया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, माया ने धीमे स्वर में कहा। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, अगर वो नहीं आया तो फिर कल देखेंगे, वेदांत ने कहा। माया ने कुछ देर और इंतजार किया, मगर जब वो नहीं आया तो वो वापस नीचे चली गई। वो उस कमरे की तरफ भी गई जो उसे मिला था। पंडित जी की बात सच होती लग रही थी। उसकी जिंदगी में दो लड़कियां थीं जो उसे हर खतरे से बचाएंगी। एक तो शायद मानवी थी, मगर दूसरी उसकी बेटी। क्या माया अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या वेदांत और उसके पिता रमेश मेहरा के मंसूबों के बारे में बलवंत मेहरा जान सकेगा? क्या वो समझ सकेगा कि वो लोग उसके बेटे को किस तरह बर्बाद करना चाहते हैं? क्या रुचिका और सुधीर इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार कर लेंगे? पसंद आया तो कमेंट में बताएं। आपको मेरी ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर लिखें। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें लिखने की प्रेरणा देते हैं।